हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 21, 22 एंड 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांभर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हमने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं और सब लोग उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, नट नर्तक गंधर्व जो डांस कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। सूत माघ वंदिना, कुछ पुराणों की गाथाओं से प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ भगवान के राजा राजवंश की प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ प्रस्ताव के समय, यानी कि जो उस समय द्वारिकाधीश कर रहे हैं, जैसे अभी भगवान चल रहे हैं, अभी भगवान हंस रहे हैं, अभी भगवान ऐसे आ रहे हैं, अभी भगवान उधर देख रहे हैं, मतलब जो भी भगवान कर रहे हैं उसके अनुसार वो गीतों के जरिए सबको बता रहे हैं। तो ये सब भगवान के अद्भुत चरित्र को गा रहे हैं। गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान अद्भुतानि च। और उसके बाद अब सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 21 में कि किस किस के साथ भगवान किस किस प्रकार मिले, क्योंकि अब सब लोग आ गए हैं, भगवान भी प्रवेश कर चुके, तो भगवान किस प्रकार से अपने बंधुओं के साथ मिल रहे हैं उसका अत्यंत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं श्लोक नंबर 21 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान तत्र बंधूनां पौराणां अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददये। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणां अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणां अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान सर्व बंधूनां, अब यहाँ पर जो एंड वाला शब्द है ना, उसमें सूत गोस्वामी कहते हैं सर्वेषां मानमाददे। सर्वेषां मतलब जितने भी लोग आए थे। अब यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान आए हैं तो लाखों की संख्या में वहां पर सारे समझो द्वारिका के समस्त नगरवासी। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि बॉर्न बेबी को लेकर माताएं और एकदम वृद्धा अवस्था का बूढ़ा, हर एक व्यक्ति यहाँ पर भगवान के स्वागत के लिए सर्वेषां। और भगवान सर्वेषां मानमाददे, मान मतलब सम्मान और आदर प्रदान किया हर एक को। अब इतने लाखों की संख्या में लोग आए हैं तो कोई ये सोच सकता है कि एक व्यक्ति भला सबको कैसे सम्मान दे सकता है, सबको सबके प्रेम को कैसे स्वीकार कर सकता है। तो उसके लिए पहले एक शब्द उच्चारण किया है सूत गोस्वामी, अत्यंत ही सुंदर है। वे कहते हैं भगवांस्तत्र, भगवांस हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण है। इसीलिए वो समस्त जितने भी लोग आए थे उनको उनका सम्मान प्रदान कर सके। इसीलिए मतलब वो भगवान थे तो भगवान ने उतने रूप कर लिए जितने के व्यक्ति थे। सब कोई को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं, सबको कोई ऐसा लग रहा था कृष्ण मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा था कृष्ण मुझे आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। उनको कोई इस तरह से नहीं, जो साधारण व्यक्ति के अभी इतने सारे लोग हैं तो हमको कैसा लगेगा वो उससे मिलने फिर मेरा टर्न आएगा, वो इतने सारे लोग हैं तो जाहिर है। तो उनको कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी कि एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए भगवान को महीने लग जाएंगे, बहुत समय लगेगा। अभी तो वो दृश्य है द्वारिकाधीश कैसे सबको एक साथ संतुष्ट कर रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। भगवान सत्र बंधूनां, बंधु जितने भी थे भगवान के, जितने मित्र थे, पौराणां अनुवर्तिनाम मतलब जो उनसे मिलने के लिए, पौराणा मतलब जो उस पुरी में रहते हैं, द्वारिका पुरी में जो रहते हैं, अनुवर्तिनाम मतलब भगवान के स्वागत करने के लिए जितने भी लोग आए थे, भगवान के बंधु, भगवान के मित्र और जितने भी द्वारिकावासी आए थे, तो भगवान ने सबका कैसे स्वागत किया। यथा विद्युपसंगम्य, यथा मतलब उस प्रकार, जिस प्रकार विधि है, मतलब जिस प्रकार से लोक में विधि है कि किससे किस तरह मिला जाता है, दोस्तों से अलग तरीके से मिला जाता है, बड़ों से अलग तरीके से, बच्चों से, तो जिस प्रकार से लोक में विधि है। उपसंगम्य, उपसंगम्य मतलब बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत ही अच्छे तरीके से सबके पास जाकर, ऐसा नहीं कि दूर से ही बस सबको कर दिया हरे कृष्णा, ने हर किसी के पास जाकर सर्वेषां मानमादर, हर एक को भगवान ने सम्मान प्रदान किया, सबके साथ भगवान ने स्नेह सबको दिया, सबको, क्योंकि बहुत समय से सब इंतजार कर रहे थे तो बड़ी आस लेकर भगवान के पास आए थे, तो भगवान ने भी सबका प्रेम स्वीकार किया और सबके साथ उपसंगम विधि के अनुसार, यथा विधि उपसंगम, विधि के अनुसार सबके साथ मिले। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ना तो निराकार हैं, ना ऐसी निष्क्रिय वस्तु हैं जो अपने भक्तों के भाव के साथ आदान प्रदान करने में अशक्य हो। ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है, भगवान के साथ आप जिस भाव से जाते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी अपने शब्दों में कि भगवान सत्र बंधुनाम पौराणाम अनुवर्तताम यथा विद्योपसंगम्य उपसंगम्य, सबके पास गए, सबके साथ मिले, सर्वेषां मानदे, सबको सम्मान प्रदान किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसे नहीं है कि उनके पास शक्ति नहीं है आदान प्रदान करने की, वो अशक्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य, यानी जिसका जैसा स्टेज था उसके अनुसार वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निस्संदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह से होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता है, इसे भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ योग्य यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते, वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं और ऐसे आदान प्रदान की वानगी यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत अत्यंत सुंदर यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं कि अगर आप भगवान को निराकार समझते हो, कि उसका कोई आकार नहीं है, वो हमें हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता, तो आप भगवान को भी आपके अंदर कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। आपने भगवान को निराकार समझा तो भगवान भी आपके साकार के साथ कोई भाव नहीं रखते, लेकिन यदि आप प्रेम और भाव के साथ जिस भाव को लेकर भगवान के पास जाओगे, उसी भाव से भगवान आपका स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर भी भगवान किस तरह से मिलते हैं उसका अत्यंत सुंदर, यानी कि जो जो जिस जिस भाव को लेकर भगवान के पास आया है उसके अनुसार भगवान उनसे मिल रहे हैं। अत्यंत सुंदर रीति से यहाँ पर सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 22 में बता रहे हैं, प्रहवादि प्रहवाभि वादिनाश्लेष करस्पर्श स्मृति क्षण आश्वास्य चाश्च चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभो प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितिक्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभो प्रहवाभिवादिना प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतेर्विभव। यहाँ पर विभु शब्द का उच्चारण किया है, सूत गोस्वामी कहते हैं विभु है भगवान। विभु का मतलब होता है कि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब वो जिसके साथ जिस प्रकार से यथा योग्य जिसका स्वागत करना था, तो जितना जितने व्यक्ति थे भगवान ने अपने उतने सर्वशक्तिमान हैं, तो इतने स्वरूप बना दिए थे। भगवान सर्व समर्थ हैं, तो भगवान ने क्या किया, किस प्रकार से मिले, प्रहवा। सर, प्रहवा का मतलब होता है सर झुकाकर, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, सर नीचे करके जिसको प्रणाम करते ना, तो कुछ ऐसे व्यक्ति आए थे जिनकी अभिलाषा थी, मतलब वो बड़े थे तो उनको ऐसा था कि हम भगवान के पास जाएंगे, हम कृष्ण से मिलने जाएंगे, वो प्रणाम करेगा। तो भगवान ने भी अपनी भगवत्ता दिखाते वक्त ये नहीं सोचा कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें सर झुका के प्रणाम करूं, मैं तो भगवान हूँ। लेकिन भगवान जो जिस भाव लेकर आते हैं ना, भगवान वैसे बन जाते हैं। भगवान प्रहवा, सबसे पहले लिखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन मतलब शब्दों से नमस्कार करना, जैसे हम करते ना, हर किसी को हाथ जोड़ के बोलते हैं हरे कृष्णा, तो किसी को भगवान ने शब्दों से नमस्कार किया। और आश्लेष, आशीष का मतलब है आलिंगन करना, तो किसी को, क्योंकि जो भगवान के सखा थे, जो मित्र थे भगवान की आयु, अब जैसे अर्जुन है, वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते और ना ही भगवान उनको कभी प्रणाम करते हैं। जब भी मिलते हैं उनको पता है कि मेरा मित्र है, मुझे गले लगाएगा। अब हृदय में एक अभिलाषा लेकर जिस भाव से जो आए थे, तो उसी तरह से भगवान उनका स्वागत भी कर रहे थे। तो किसी को प्रहवा, किसी को सर झुकाकर, किसी को अभिवादन करके, किसी को आश्लेष करके, आलिंगन करके, और किसी कर स्पर्श, कर कहते हैं हाथ को, स्पर्श मतलब हाथ मिलाकर, मतलब किसी को भगवान ने अपना हाथ स्पर्श करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए दिया। कर स्पर्श स्मितेक्षण, और किसी को केवल दृष्टिपात किया, हंसकर किसी की ओर देखा, मतलब जो जिस भाव से। अभी हम लोग अगर जाते हैं वहां पर, तो हम जानते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि भगवान हम हमसे मिलेंगे, किस तरह आलिंगन करेंगे या कर स्पर्श करेंगे। हम सिर्फ इतना ही, भगवान यदि मुस्कुराकर हमारी ओर देख लेंगे, हम समझेंगे कि हम कृतार्थ हो गए। तो जो जो जिस जिस भाव को लेकर भगवान के पास आया था, भगवान ने उसी के साथ प्रहवा, किसी को सर झुकाकर, किसी को अभिनंदन करके, किसी को हग करके, किसी को हैंडशेक करके, और किसी को मुस्कुराकर उसकी देख कर उसकी ओर, मतलब ईक्षते स्मित ईक्षणे, मतलब हंसकर उसकी ओर देख कर आश्वास्य यानी प्रोत्साहन किया। च आगे बता रहे सूत गोस्वामी कि भगवान किसी से घृणा नहीं करते, चाहे कोई भी भगवान के पास आता है, भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं श्वपा के भ्यो, श्वप कहते हैं, अश्व कहते हैं उसको, कुत्ते को, और पाक यानी कुत्ता खाने वाला, यानी सबसे अदम जाति वाले। भले वहां पर द्वारिका में कुत्ता खाते नहीं थे, लेकिन वो जाति है एक, उसको श्वपाके बोलते हैं, श्वपाके शुनि चय। तो ये जो कुत्ता खाने वाले चंडाल होते हैं ना, भगवान ने उनके साथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, उनको उत्साहन किया। वराय, और कुछ ऐसे वराय यानी आशीर्वादों से, च अभिमते, जिसका जैसी इच्छा थी, जिसको जैसी इच्छा थी, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, भगवान ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और क्योंकि भगवान विभू हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए भगवान हर किसी के साथ उसी तरह का प्रकार से आदान प्रदान करते हैं जिसके वो योग्य होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भले बहुत दफा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि डॉग ईटर के परिवार में भी शुद्ध भक्त यदि कोई आ जाता है, तो शुद्ध भक्त का सानिध्य उसे मिल जाता है, तो उसके द्वारा यदि वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र में अक्सर आश्वपाके भी लिखा होता है, मतलब कुत्ता खाने वाले चंडाल के विषय में लिखा होता है कि यदि वो भगवान के पास आते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन काउ ईटर कहीं नहीं लिखा होता। तो क्या काउ ईटर भी मनुष्य, जो ऐसे मनुष्य भी तो होते हैं, उनके विषय में क्यों नहीं लिखा होता? वास्तविकता क्या है कि जो काउ ईटर होते हैं ना, उनको शास्त्र मनुष्य की कैटेगरी में खड़ा ही नहीं करता। वास्तव में वो मनुष्य नहीं होते, वास्तव में वो राक्षस होते हैं जो कि काउ ईटर होते हैं या गऊ को गऊ का मांस खाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान तो राक्षसों को भी भगवान यदि कहते अपिचेत सू दुराचारो वजते, यदि आप राक्षस भी हो ना तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा यदि तुम मेरे पवित्र नाम का जप करोगे तो। अनुवाद, भगवान ने वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहां तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर प्रति अभिवादन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान का स्वागत करने के लिए सभी प्रकार के लोग थे, पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्गमुनि से मिलकर गर्गमुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ते के खाने वाले आदि चंडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार भेंट की। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश हैं और इस प्रकार कोई उनका पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन तिस पर भी भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वात्सल्य रखते हैं। वे इन भौतिकता से लीन जीवों पर को अपने धाम वापस लेने के लिए स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते, यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यदि तुम अपराधी हो तो तुम मेरी शरण में नहीं आ सकते, यदि तुम अयोग्य हो तो मेरी शरण में नहीं आ सकते। भगवान ने कहा ये पी स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते पियंति परम गति। तुम यदि पापियों में सबसे बड़े पापी भी क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, तुम परम गति को प्राप्त कर सकते हो यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान ने तो अपनी कृपा के द्वार सबके लिए खोल रखे हैं, अभी ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस भगवान की कृपा को स्वीकार करें अथवा ये कहकर टुकरा दें कि हम योग्य नहीं हैं। भगवान ने अयोग्य नहीं ठहराया, हम स्वयं खुद को अयोग्य ठहराते हैं। तो हम सबके लिए भगवान हमारी यथा योग्य हमें सम्मान प्रदान करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान संसार में आते हैं, बारंबार भगवान अपनी पवित्र लीलाओं के द्वारा हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि हम भगवान के प्रति अपने जो हमारा प्रेम जो सुषुप्त अवस्था में है उसको जागृत कर सकें। आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं 23 में, स्वयं च गुरु भिर्विप्रये सादरैस्थ वीरैरपि आशीर्भिर् युज्यमानोऽन्यै वन्दिभिश्चाविशद्पुरम्। स्वयं च गुरु भिर्विप्रये सादरैस्थ वीरैरपि आशीर्भिर् युज्यमानोऽन्यै वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुभिर्विप्रये सादरैस्था वीरैरपि आशीर्भिर् युज्यमानोऽन्यै वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। शब्दार्थ, स्वयं च गुरुभिर्विप्रय, स्वयं मतलब अपने आप, भगवान स्वयं भी वो जो कुछ वहां पर भगवान के गुरु और ब्राह्मण जो आए थे उनका वो क्या लेकर आए थे मन में भाव कि हम भगवान को आशीर्वाद देंगे, है ना। उनके हृदय में ये था कि भगवान अभी हस्तिनापुर से लौटे हैं इतनी बड़ी महाभारत की युद्ध करके, तो भगवान मतलब वो बड़े थे, गुरु थे, विप्र थे, ब्राह्मण थे, तो उनकी इच्छा थी कि हम द्वारिका देश को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो स्वयं भगवान को आशीर्वाद देने के लिए, तो भगवान उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान उनको कह रहे हैं हाँ ये आपका आशीर्वाद ही तो था जिसके कारण मैं युद्ध में सफल हुए हम, ये आपके आशीर्वाद से ही तो मैं आज सुख से सही सलामत आज वापस आप लोगों के साथ आया हूँ, आपके समक्ष में मुझे कोई क्षति नहीं हुई इतने बड़े युद्ध में। तो उनको भी उनके आशीर्वाद को भी भगवान स्वीकार करते हैं और स्वयं से गुरु भीर विप्रय सादरय स्थ वरयरपि, मतलब सादरय का मतलब होता है अपनी पत्नियों के साथ, जो इस्थ वरयरपि मतलब कुछ बहुत ज्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं ना फिर वो घर से निकलते नहीं है, वो बस घर पे ही होते हैं, आते जाते नहीं है, लेकिन आज जब द्वारिका देश द्वारिका में पधार रहे हैं तो कोई भला अपने घर में कैसे रह सकता है। तो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े बूढ़े गुरु और बहुत वृद्ध व्यक्ति वो भी अपनी पत्नियों के साथ, अभी उनको क्या आवश्यकता है घर पे बैठे रहना। लेकिन भगवान जब आए हैं तो उनको देखने से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने घर में रहता, तो वो सब अपने घरों से अपनी पत्नियों के साथ वो बूढ़े बूढ़े लोग आए थे। आशीर भी मतलब आशीर्वाद से, युज्यमान यानी प्रशंसित होकर, अन्य सारे वंदी भी यानी प्रशंसकों द्वारा, तथा अवशित प्रवेश किया पूरम, सब सारे लोग को कुछ का आशीर्वाद ग्रहण करके और कुछ को आशीर्वाद देकर भगवान आज अविशत प्रवेश कर रहे हैं पूरम यानी नगर में। तो भगवान सामर्थ्य है, भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, भगवान के अंदर वास्तव में इतना सहज प्रेम है कि जो जिस भाव से भगवान की ओर निहारता है भगवान, उसी भाव से भगवान सबको प्रेम प्रदान करते हैं। तो अनुवाद देखिए, तब भगवान ने बूढ़े संबंधियों तथा सब पत्नीक अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया, वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान की यशो का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की बड़ाई की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी विरक्त जीवन के लिए धन संग्रह के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान कर दी जाती थी। ऐसे ब्राह्मण या राजा के चाटुकार नहीं होते थे अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। श्री भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि आजकल जैसे तथाकथित ब्राह्मण होते हैं उनको धन संग्रह करने की इच्छा होती है कि अब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बहुत सारे पैसे जमा करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं करते थे। वो जो राजा होते थे वो इतने अच्छे कार्य करते थे कि ब्राह्मणों का पालन करते थे और ब्राह्मण भी जो राजा के बड़े बड़े उनके कार्य होते थे,
और जो ये ब्राह्मण होते थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे और उनकी सारी आवश्यकताएं वो राजा प्राप्त उनको कर देते थे, लेकिन वास्तव में यशों के पात्र, समस्त यशों के पात्र आज भगवान द्वारिकाधीश उनके सामने राजा के तौर पर उपस्थित हैं। तो वास्तव में जो यश उन्होंने किया भगवान श्री कृष्ण का, वही उनके जीवन की वास्तविक कमाई है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं, स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण आज स्वयं धन्य हो गए हैं, क्योंकि उनके राजा साक्षात भगवान है जो सारे यशों के पात्र हैं। तो ये किसी ने भी मौका मिस नहीं किया, ये सुप्रीम चांस उनको मिला था भगवान की प्रशंसा करने का, भगवान का गुणगान करने का, भगवान को आशीर्वाद देने का, भगवान के साथ प्रेम से स्नेह से मिलने का। तो यहाँ पर सब भगवान से मिलने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ पर एक बात हम रियलाइज कर रहे हैं कि सारे पुरुष तो आए हैं, परंतु द्वारिका की स्त्रियां जो कि कितने प्रेम और स्नेह से भगवान को कितने समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर लोक लज्जा के कारण वो तो भगवान से मिलने नहीं आई। उन सबकी भी तो इच्छा होगी कि भगवान से मिलें, भगवान को देखें, भगवान से प्रेम करें, भगवान से मिलें। लेकिन अब क्योंकि लोक विधि ऐसी है कि वो भगवान से मिलने नहीं आई, अब उनके विषय में सुत गोस्वामी में बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। और जिस तरह से पहले हम हस्तिनापुर की स्त्रियों के विषय में सुन रहे थे, अब सुत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर ढंग से द्वारिका की स्त्रियों के विषय में बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी तरह से कर सकूं।